थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमान अपने शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा। तू पानी उठे तेरी आज्ञा से आधी थम जाए, तू है पवित्र यहोवा शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई, तेरी इच्छा से तू पानी उठे तेरी आज्ञा से आधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना के जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज प्रतिदिन की तरह फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसराइल जो परमेश्वर से दूर हो गई है, यहाँ तक कि वे व्यभिचार में अपने जीवन को बिता रहे हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देता है। क्योंकि अवसर मिलने पर भी उन्होंने मन फिराव नहीं किया है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 6 और उसके 2 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे, ताकि आज के अध्ययन के द्वारा भी हम अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मेरे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके सामर्थ्य और जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आँखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, उन्हें एकाग्रतापन दें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आप हर एक को अपनी आशीष दें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश और बीमार अवस्था में हैं, परेशान और चिंतित हैं। दयालु प्रभु, उन पर भी कृपा दृष्टि करें और उन्हें छुएं और चंगाई दें, ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके वचनों पर विश्वास कर सकें, आप पर विश्वास कर सकें। आज प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 पद को निकाल लीजिए। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के प्रकाश में ध्यान देने योग्य बात है। वह भी तीसरे दिन जी उठा था। यहूदी और अन्य जाति दोनों ही के धर्मी ठहराए जाने के लिए वह जी उठा है। यह इसराइल के भविष्य में भी प्रासंगिक है। जिस दिन परमेश्वर इसराइल को स्वदेश लौटाकर अपने पास रखेगा, यहेजकेल अध्याय 37 में परमेश्वर उस दिन को पुनरुत्थान कहता है जो उस पर आधारित है जिसका तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ था। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में प्रत्येक ग्रहण करने वाले के लिए मुक्ति और धार्मिकता है। जी हाँ, जो उसे परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाती है। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 11 में इसराइल के भविष्य की चर्चा करता है। आज कलीसिया बनाने में परमेश्वर का उद्देश्य है कि वह प्रत्येक कुल, जाति और भाषा के मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करे, वे उसकी आराधना करेंगे। जब परमेश्वर कलीसिया में अपना उद्देश्य पूरा करके उसे उठा लेगा, तब वह इसराइल पर चित लगाकर उसका पुनरुद्वार करेगा। मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है और जिन्होंने नहीं लिखा सब ने इसराइल के लिए परमेश्वर के भावी उद्देश्य की चर्चा की है। इससे पूर्व कि इसराइल के वंशज प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते, मूसा ने परमेश्वर द्वारा उनके तीसरे पुनरुद्वार के दिन के विषय भविष्यवाणी की थी। यह तीसरा पुनरुद्वार जो इतिहास का तीसरा दिन होगा, उनका सदाकालीन पुनरुद्वार होगा। उनके इस तीसरे पुनरुद्वार और प्रभु यीशु के तीसरे दिन पुनरुत्थान में परस्पर संबंध है। हम आगे पढ़ते हैं होशे 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। लिखा है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। उनकी आरंभिक वर्षा अक्टूबर माह के अंत में होती थी और घनघोर वर्षा होती है, और अंतिम वर्षा मार्च तथा अप्रैल माह में होती थी जो कटनी के पूर्व बरसती थी। कुछ लोगों के विचार में अंतिम वर्षा की उपमा उस देश में पूरी हो गई है, परंतु मेरे विचार में न तो आरंभिक वर्षा हुई है और न ही अंतिम वर्षा अभी गिरी है। इसराइल में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है और हम वर्षा के आगमन की प्रतिज्ञा पूर्ति वहां नहीं देख रहे हैं। जी हां, जब वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे तब उन्हें ही आशीषें नहीं मिलेंगी, भूमि और प्राणी जगत भी आशीषित होगा। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं। लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। जीवन के समस्याओं के समाधान का यही भेद है कि आप प्रभु को जानें। प्रेरित पौलुस को अपने जीवन के अंत में भी यही एक इच्छा थी। फिलिपियों की पत्री 3:10 में वह कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इस जीवन में परमेश्वर के ज्ञान की अपेक्षा उन्नति का मार्ग अन्य कोई नहीं है। इस विषय में परमेश्वर का वचन अत्यंत प्रबल है और या तो सही है या गलत, परंतु हजारों वर्षों से परमेश्वर का वचन सही सिद्ध हुआ है। मेरे विचार में आज की पीढ़ी इसे किसी भी प्रकार विचलित नहीं कर सकती है। इसराइल को पापों का दंड मिलेगा, इसे हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उन्हें दंड देता है। होशे 6:4 में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे एप्रेम, मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर कुछ परेशान है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, परंतु तुम हो कि पाप पर पाप करते जाते हो, इसलिए मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर दुविधा में है। दंड देना परमेश्वर के लिए एक अस्वाभाविक काम है। वह तो दंड देने की अपेक्षा बचाना चाहता है, परंतु यदि मनुष्य पाप करता ही जाए तो परमेश्वर को एक न एक दिन उसे दंड देना ही होता है। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन इस समय किस प्रकार का है। क्या आप परमेश्वर के निकट हैं या आप पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं? यदि ऐसा ही है तो उसे आपको दंड देना ही होगा। इस्राएली लोग धर्म निभा रहे थे, परंतु परमेश्वर के ज्ञान से वंचित थे, जैसा कि हम में से कई कलीसिया के लोग ऐसा ही आज कर रहे हैं, और इस कारण उससे वे दूर थे। आज धर्म तो बहुतायत से है, परंतु मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं किसी अखबार के संपादक को लिखा पत्र सुना रहा हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, आज के समाज में धर्म का उपयोग समाप्त हो गया है। मनुष्य इस नशे से उभर चुका है। अब उसे अज्ञात का वर्णन करने के लिए लोक कथाओं की आवश्यकता नहीं है और न ही अलौकिक की आराधना द्वारा उसके अस्तित्व को प्रकट करना है। हमारे आज के जटिल समाज में धर्म केवल मस्तिष्क को सुन्न और धूमिल करता है। धर्म महत्वपूर्ण ब्यौरा और जानकारियों को धुंधला और विकृत बनाता है, महत्वपूर्ण वाद विवाद में हस्तक्षेप करता है तथा पक्षपात और कट्टरता को बढ़ावा देता है। अब समय आ गया है कि मनुष्य इस मानसिक अंधता को दूर करे। मेरे प्रियो, आप इसे सुनकर चकित होंगे, परंतु मैं इससे सहमत हूं। काश हम धर्म से मुक्ति पा लें। अब किसी ने इस पत्र का उत्तर दिया जिसे समाचार पत्र ने छाप दिया। मैं धर्म के प्रभाव के विषय इस पत्र से सहमत हूं, क्योंकि धर्म मनुष्य के अपने प्रयास द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का परिश्रम है। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य नहीं हूं, परंतु 4 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जीवन बदल गया। मैंने प्रभु यीशु से कहा कि वह मेरे जीवन को नियंत्रित करे, और मैंने यह मान लिया कि मनुष्य अपने प्रयास द्वारा परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उसके साथ हमारे संबंध को संभव बना दिया। उस समर्पण के बाद मैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति अधिकाधिक जागरूक हो गया हूं, और मैं स्वयं को और अन्य मनुष्यों को प्रेम करना और स्वीकार करना सीख गया हूं, चाहे उनकी आयु, रंग, जाति और धर्म कुछ भी क्यों ना हो। मेरे मित्रों, आज लोगों का कहना है धर्म का त्याग करो। मैं कहता हूं उसे पिछले द्वार से बाहर करके जगत की ज्योति प्रभु यीशु को भीतर आने दो। इसराइली धर्मी थे, परंतु उनका धर्म प्रातःकालीन बादल के समान था, केवल एक रूप, संस्कार पूर्ति, अनुष्ठान पूर्ति बस, सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान था। अनेक लोगों के लिए धर्म एक ढीले कपड़े के समान है जिसे वे जब चाहें पहन ले और जब चाहें उतार दें। परमेश्वर ने उनको दोष इसलिए दिया कि वे धर्म निभा रहे थे, परंतु परमेश्वर के ज्ञान के अभाव में उन्हें परमेश्वर के साथ जीवन बदलने वाली अनुभव प्राप्त नहीं थी। जी हां, आज हमारे कलीसियाओं में कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को जी रहे हैं, परंतु उनके जीवन बदलने वाली गवाही या अनुभव उनके जीवन में नहीं है। उन्होंने इसका अनुभव प्राप्त नहीं किया है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति धर्म नहीं परंतु जीवन बदले। होशे 6 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैंने भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि उसने भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा उनकी खाल उधेड़ दी। मैं उन सब पत्र लेखकों का आभारी हूं जो हमारे वचन के प्रसारण को सराहते हैं कि हम साफ और स्पष्ट वचन सुनाते हैं। मैंने तो अपनी संपूर्ण सेवा यही करने का प्रयास किया है, और मेरा अनुभव है कि वे जो सच्चे दिल से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं हमें स्वीकार करते हैं, शेष सब हमारी आलोचना करते हैं। मैं तो उनकी आलोचना भी सुनना चाहता हूं। जी हां, परमेश्वर इसराइल से कहता है, मैंने भविष्यद् वक्ताओं द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला। उन्होंने मेरा वचन ज्यों का त्यों सुनाया, परंतु तुमने नहीं सुना। आज परमेश्वर के वचन में रुचि बहुत अधिक दिखाई देती है, परंतु मुझे संदेह है कि उसका जीवन बदलने और मन फिराव का प्रभाव कितना पड़ रहा है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है कि जीवन बदले। आगे हम पढ़ते हैं, मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उन्हें घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। वे अज्ञानवश पाप नहीं कर रहे थे, उन्हें जानकारी की कमी नहीं थी, परमेश्वर ने उनके पास भविष्यद्वक्ताओं को भेजा था, परंतु उन्होंने परमेश्वर और उसके वचन से मुंह मोड़ लिया था, और यही कारण था कि वे पाप में जीवन जी रहे थे। होशे 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मेरे प्रियो, वे केवल दिखावा करते थे। आप रविवारीय आराधना में जा सकते हैं, आप धर्म के काम कर सकते हैं या धर्मी भी हो सकते हैं, आप प्रचारक की, गायन मंडली की और सबकी आलोचना कर सकते हैं, और हो सकता है कि वे इस योग्य ही हों, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप व्यवहारिक विश्वास करें और आपके जीवन और मन में दया का प्रमाण हो। दावत करने को रोटी तोड़ना और प्रभु भोज ना समझें, परमेश्वर का वचन आप ना समझें। जी हां, परमेश्वर के वचन के अध्ययन का विकल्प कलीसियाई गतिविधियां कभी नहीं हो सकती हैं। परमेश्वर का वचन आपको सीखना है तो आपको स्वयं से उसको पढ़ना है, मनन चिंतन करना है, उसके वचन की गंभीरता को समझकर उस परमेश्वर को जानना है और उसको धन्य कहना है। होशे 6 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। लिखा है वाचा, अर्थात उस जाति के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा, उसको उन्होंने तोड़ दिया। होशे 6 अध्याय के 8 पद में आगे हम पढ़ते हैं, गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थ कार्यों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। गिलाद, यर्मिया के पुस्तक 8 अध्याय उसके 22 पद से हम गिलाद को बलसान के लिए प्रसिद्ध जानते हैं। यह बलसान औषधि रूप में काम आने वाली एक बूटी थी, परंतु होशे के युग में केवल पाप ही पाप वहां भरा था। होशे नबी के पुस्तक 6 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। मेरे मित्रों, याजक प्रजा को जीवन जल और जीवन की रोटी देने से चूक गए थे, जो हत्या करने जैसा था। सच कहूं तो प्रचारक यदि परमेश्वर के वचन के प्रचार से चूकता है तो वह ठीक ऐसा ही दोषी है जैसा यहां पर याजक है। यह मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है। होशे 6 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसराइल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है, उसमें एप्रेम का छिनाला और इसराइल की अशुद्धता पाई जाती है। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुवाई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। मेरे प्रियो, यह यहूदा के लिए चेतावनी है कि उनके दंड का समय भी निकट है। कहता है, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। यह भावी घटना है जब परमेश्वर इसराइल को स्वदेश लौटाएगा, परंतु इस समय उन्हें दंड देना आवश्यक था। परमेश्वर का दंड अवश्यम भावी था, और इसराइल ने जब दंड का आगमन देखा तो परमेश्वर चाहता था कि वे उसके पास आएं। परंतु वे मिस्र और अशुरों की ओर आशा लिए हुए थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वे पापों से विमुख होकर उसकी ओर फिरें, परंतु उन्होंने और अधिक पाप करना आरंभ किया है, वरन खुल्लम खुल्ला पाप करने लगे हैं। वे पतन की गहराइयों में उतर गए थे। जी हां, आज यही दशा हम मनुष्यों की भी है। हम परमेश्वर को खुल्लम खुल्ला चिढ़ा रहे हैं और पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं, परंतु ध्यान रखें कि परमेश्वर इसका दंड देगा। वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा तो थे, परंतु पाप के कारण उनके हट से दुखी होकर परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेज दिया, दासत्व में भेज दिया। परमेश्वर तो जानता था कि वे पाप कर रहे हैं, परंतु अब उन्होंने लज्जा की सीमा पार कर दी थी और अब उनके पाप के कर्मों को साहस का काम माना जाता था। वे खुलकर पाप करने का अर्थ आधुनिकीकरण नहीं था, यह तो वास्तव में सभ्यता से पिछड़ना है। जी हां, पशु प्रवृत्ति है। आप समझदार मनुष्य होते तो परमेश्वर की ओर बढ़ते, परंतु आप ऐसा नहीं करते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके स्वभाव में पशु प्रवृत्ति है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही कहता है कि हम इस संसार में रहते हुए अपने पापों को, अपनी बुराइयों को छोड़ दें और हम परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि हम उस भयानक दंड से बचाए जाएं। हम अपने स्वभाव को पशु प्रवृत्ति में ना लाएं, अपने आप को पिछड़ा ना कहें, परंतु परमेश्वर के सामने आएं और प्रभु से कहें कि मैं आपके संगति में बढ़ना चाहता हूं, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएंगे, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में आशीष होगी। क्या आप नहीं चाहते कि आप ऐसे आशीषों को प्राप्त करें? यदि हां, तो आज ही आप अपने जीवन में एक सही निर्णय ले लें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने उसने कहा।
प्रभु